जय राजा माधवा कुंजा बिहारी हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे जय जगन्नाथ जय बालदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी बाबा तुम्हें जय गौरनिताई गौरनिताई जय गौरनिताई प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 Thank you. ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नश्चप्रायेश भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैश्चिकी श्रीमद्भागवतम स्कंद 10 अध्याय 9 श्लोक संख्या 6 संजात कोपः स्पृहित अरुण अधरम् संदस्य दद्भिः दधिमन्तभाजनम् भित्वा दृशाश्रुः दृष्ट अश्मना रहः जगास अयंगवम् अंतरम् गतः संजातकोपा स्फुरितारुणाधरम् सन्दस्यदद्भिर्दधिमन्तभाजनम् भित्वा मुशुषु दृष्ट अश्मनारहो जगासयङ्गवम् अन्तरम् गता जगासहयङ्गमन्तरम् गतः सञ्जातकोपस्फुरितारुणाधरम् छन्दस्य दद्भिर्दधिमन्तभाजनम् भित्वा मुशाश्रुदर्श अश्मनःरवो जगासयङ्गवमम् अन्तरम् गतःसञ्जातकोपाधरम्
Bye. भस्मनारवो सहयंगमंतरं गता
ेदधिमन्थभाजनम् भाजनम् भीत्वा मुषाश्चिमाश्चमानहो जगासयङ्गवमन्तरं गतः माताजि सञ्जातकोपस्फुरितारुणाधरम् सन्दशदद्वेदविवन्तभाजनम् जातकोपमारुणाधरम् अन्धशदद्वेदधिमन्तभाजनम् इस प्रकार है संजातकोपा कृष्ण अत्यंत क्रुद्ध होकर स्फुरितारुणाधरम सूजे हुए लाल लाल होंठे हैं लाल होंठ संदस्य काटते हुए दद भी अपनी दांतों से दधिमंत भाजनम मटकी को भित्वा तोड़ते हुए मृषाश्रु आंखों में नकली आंसू भरकर ద్రిషత్ అశ్మన సంకటే రహః ఏకాంత స్థాన మే జగాత ఖానే లగే అయంగవం తాజా మక్కన్ అంతరం కమరే కే భీతర్ గతహా జాకర్ అనువాద తాత్పర్య డివైన్ గ్రేస్ ఏసీ భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభుపాద్ కే ద్వారా శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జయ. अनुवाद अत्यधिक क्रुद्ध होकर तथा अपने लाल लाल होंठों को अपने दांतों से काटते हुए आंखों में नकली आंसू भरते हुए कृष्ण ने एक कंकड़ मारकर बिलोवनी तोड़ दिया. इसके बाद एक कमरे में घुस गए और एकांत स्थान में ताजा मक्खन खाने लगे. यह स्वाभाविक है कि जब कोई बच्चा क्रुद्ध होता है तो वह आंखों में नकली आंसू भर कर चिल्लाने लगता है. कृष्ण ने भी वही किया जो अपने लाल लाल होंठों को अपने दांतों से काटते हुए उन्होंने कंकड़ से मटकी तोड़ डाली और कमरे में घुसकर ताजा मक्खन खाने लगे. ओम ज्ञान विरांदस्य ज्ञानांजन शलाकाय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपत्कदामहं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् శ్రీరాధా కృష్ణపాదాన్ సగణలితా శ్రీవిశాఖాన్వితాంశ్చ హే కృష్ణ కరుణా సింధౌ దీనబంధౌ జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే సప్తకాంచన గౌరంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానోసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియ వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యైవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్తవృంద. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ. ఈ బహుత్ మహత్వపూర్ణ శ్లోక హే. కేవల్ భగవాన్ కీ सुंदर लीला का वर्णन करने वाला श्लोक ही नहीं बल्कि ये श्लोक हमारा गौड़ी वैष्णव सिद्धांत जो शुद्ध प्रेम भक्ति के ऊपर आधारित है उसको स्थापना करने वाला भी एक श्लोक है. तो श्रीपाद विश्वनाथ ठाकुर इस श्लोक को अपने टीका में कोट करते हैं. कौन सी टीका में? रूप गोस्वामी पाद ने ग्रंथ रचना किया जिसका नाम है भक्ति रसामृत सिंधु. इस भक्ति रसामृत सिंधु का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है जिसको परिभाषा सूत्र कहा जाता है भक्ति रसामृत सिंधु का, वो है अन्याभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मा दिनावृतम अनुकूल्यन कृष्णान सेवनम भक्ति अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्ति तमाम. ये जो भक्ति शुद्ध उत्तम भक्ति है उसका परिभाषा रूप गोस्वामी पाद श्लोक में करते हैं। तो इस श्लोक का टीका या इस ग्रंथ का जो टीका अनेकों आचार्य ने किया, लेकिन मुख्यतः शिल जीव गोस्वामी पाद ने किया और शिल विश्वनाथ ठाकुर ने भी किया है। इस श्लोक का टीका करते हुए शिल विश्वनाथ ठाकुर एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत को स्थापना करते हुए इस श्लोक को वर्णन करते हुए न्यायविलास वर्णन करते हुए उन्होंने अपने टीका में ये श्लोक को कोट किया है, तो इसलिए ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। पहले ये श्लोक का थोड़ा सा विश्लेषण करने के बाद वर्णन करने के बाद हम शिल विश्वनाथ ठाकुर अन्याभिलाष का शून्य में श्लोक की टीका में श्लोक को क्यों कोट किए, कैसे कोट किए, उसका वर्णन हम सुनने के लिए प्रयास करेंगे। सबसे पहला बात यह है कि इधर इस श्लोक में प्रसंग ऐसा है, आप पिछले दो तीन श्लोकों से जानते आ रहे हो, यशोदा मैं अत्यंत प्रसन्न होगी, इतना आनंद को अनुभव करने लगी। कभी कभी कुछ ऐसा भक्त भावनाओं का अनुभव करते हैं, भले ही कृष्ण का विचार नहीं रहता है कि मैं इस प्रकार का आनंद प्रदान करूं, अपना स्वभाव के अनुसार अनेकों अनेकों कार्य करते हैं, तो वो कार्य हैं से भक्त ऐसे कुछ चीजों को देख के अनुभव कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरणार्थ, भगवान चाहते कि मैं भक्त का रक्षा करो, रक्षा करते हैं, तो भगवान का ये रक्षा करने की भावना को देख के भक्त आनंदित हो जाते हैं। श्री रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत में कहते हैं, कुछ ऐसे ऐसे होता है, भगवान का उद्देश्य नहीं रहता है कि मैं भक्त को ये चीज दिखाऊं, मेरे कार्यों के द्वारा ये चीज दिखाऊं, लेकिन भक्त भगवान के कार्य को देख के कुछ ऐसे चीज को समझ लेते हैं और आनंद को अनुभव करते हैं। तो कृष्ण सुबह उठाना था रोज, यशोदा उठाती थी रोज, एक दिन नहीं उठाया। अभी कृष्ण सोच रहे थे कब आएगी उठाएगी, ऐसे तो रोज उनका आदत है सुबह उठना, रोज यशोदा मैं उठाती थी, उठाने के समय नखरा होता है कि नहीं बच्चे का, नहीं नहीं उठो अभी वैसे मैं उठो उठो ऐसा करती है। सुबह सुबह वो नखरा करने का मौका नहीं मिला। पहली बात ये है, अभी कब आएगी यशोदा सब सोच रहे थे, नहीं आए तो बहुत गुस्सा आए कृष्ण को, गुस्सा उधर से शुरू हुआ, ऐसा नहीं कि अभी शुरू हुआ है, ये शो है ना, संजात कोपः, संजात कोपः, इनको क्रोध आया। ऐसा क्रोध कभी आता है तो ये नहीं समझना चाहिए कि अभी आया क्रोध, पहले से संजात, पहले से एक्यूमुलेट हुआ है, एक्यूमुलेट क्या बोलेंगे, पहले से संचित हुआ है क्रोध, वो कब, सुबह से ही था, उठने से समय से ही था। श्राधा गिरधारी भगवान जगन्नाथ, क्योंकि सबसे पहला आप जैसे मान लो कि कोई किसी ने कुछ कहा तो बिल्कुल क्रोधित हो जाता है, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि उसने कहा इसलिए क्रोध हुआ, वो पहले से ही था, वो अभी बाहर आया। बहुत सारे घटना घटी थी पहले, वो सब अंदर ही अंदर दबा हुआ था। तो सबसे पहला बात ये है, क्रोध क्या हुआ, सुबह ही था, तो सुबह उनको आके रखरा करने का मौका नहीं मिला। दूसरा, सुबह सुबह उठते उठते ही यशोदा में दूध पिलाती है उनको, वो भी नहीं हो पाया, तो कृष्ण इंतजार करते यशोदा आई क्या, तो उठ के दिख रहे थे, नहीं आए, वापस सोया, वापस आंख बंद की है, तो वापस उन्होंने आंख खोल के देखा अभी नहीं आ रहे, तो उनको लगा अभी मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो कृष्ण ऐसे, एक तो क्रोध है और नींद पूरा गायब भी नहीं है, जैसे सुबह उठते हैं तो नींद पूरा नहीं रहता ना, जाते ना हम लोग, ऐसे कृष्ण बच्चे भी ऐसे जाते, पूरा बाल बिखरे हुए हैं, ये रुपये से धीरे धीरे से कृष्ण गए और क्या किया उन्होंने, जो मंथनी होता है ना, मंथन करने वाला डंडा रहता है, और भी डंडा रहता है उसको उसको सिर रखने के लिए, आपने गाँव में देखा होगा, तो शहर में तो ऐसा मिलते नहीं है, गाँव में एक बड़ा मजबूत डंडा रहता है, उसकी हाथ लगा के मंथनी रहता है, यशोदा मंथन कर रही थी, कृष्ण ने कि ये क्या कर रही है आज, आज कुछ नया काम कर रही है क्या, क्योंकि आज तक यशोदा ने कृष्ण ने ही नहीं देखा, यशोदा मंथनी कर रही है, मंथन कर रही है मदन को, कोई और कर रहे थे रोज। तो कृष्ण ने क्या किया, धीरे धीरे आके तो उन्होंने वो खंभे को पकड़ा जो पकड़ा। तो यशोदा में कृष्ण का ये देख के क्या समझी, क्या देखी, कितना बुद्धिमान है देखो। तो कृष्ण ने आके ये नहीं कहा मैं मुझे दूध क्यों नहीं पिलाया, उठाया क्यों नहीं, कुछ नहीं बोला, खाली वो जो बड़ा खंभा है उसको पकड़ के सारा बातें कह दिया उन्होंने। कभी कभी कुछ चीजें होता है बिना बोले कहा जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो बिना बोले कह देता है। कभी मान लो कि कोई व्यक्ति ने कुछ प्रश्न पूछा, एक बार श्री प्रभुपाद से एक प्रश्न पूछा, बहुत लंबा चौड़ा प्रश्न था, तो प्रभुपाद ने कहा एनी अदर क्वेश्चन, उनको जवाब ही नहीं दिया। जवाब नहीं देते हुए भी जवाब दे दिया, तुम्हारा प्रश्न जो है मूर्ख वाला प्रश्न है, मूर्ख का प्रश्न से कोई दम नहीं है। तो कभी कभी केवल इशारे मात्र से ही बहुत सारे चीजें, वही बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण है, बिना बोले ही कुछ चीज को बताना, कुछ चीज को संदेश पहुंचाना, ये बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण है। तो कृष्ण ने खाली खंभे को पकड़ के ऐसे देखे कृष्ण यशोदा को, अब यशोदा पूरा समझ गई, ये नाराज है, दुखी है, भूखा है, सब कुछ है, और मैं उनको प्यार नहीं किया, उसको नखरा करने का मौका नहीं दिया, सब समझ गए। तुरंत यशोदा बहुत प्रेम से क्या कृष्ण को उठाई, गोद में रखी, गोद में रख के कृष्ण को दूध पिलाने लगी। भाई अचानक यशोदा मैं को याद आया, पिछले श्लोक में वर्णन है कि उधर दूध उबल रहा है, उसको मुझे क्या करना है, उसको देखभाल करना है। तो यशोदा मैं गई, कृष्ण का पहले से क्रोध था, वो तो मन में था, क्या हुआ अभी मन से बाहर प्रकट हुआ, वाणी में, वाणी से एक्शन में प्रकट हुआ। अभी ये जो श्लोक में कृष्ण का जो सुबह का जो क्रोध था, अभी दूध नहीं पिलाया वो ज्यादा क्रोध नहीं था, वो खाली एक ऐसा एक चीज था जिस वजह से बाहर सुबह का जो क्रोध वो बाहर निकला। इसलिए इधर ये शब्द इस्तेमाल किया गया है, संजात कोपः, संजात कोपः, इन दिस वे कृष्णा बीइंग वेरी एंग्री, इन दिस वे कृष्णा बीइंग वेरी एंग्री, बीइंग वेरी एंग्री मतलब वो क्रोध सुबह से ही था अभी, लेकिन वो बाहर निकला। संजाता ये शब्द इस्तेमाल किया गया है, संजात कोपः, आगे संजात कोपः, जब एक कोप जब बाहर प्रकट हुआ, कुछ बोलना चाहते थे, बोलेंगे किसको बोलेंगे, हु विल लिसन। कभी कभी क्रोध होता है ना किसी को, बच्चे को, खासकर बच्चे को, वो तुरंत बोलता नहीं है, वो पहला वो होंठों में प्रकट होता है, पूरा दांतों से होंठों को खाता है, कुछ करता है, समथिंग विल डू समथिंग लाइक दैट। भगवान के होंठ होते बहुत लाल थे, अरुणाद अधरम संदस्य दद्भिर दधिमंत भाजनम, संदस्य दद्भिर, संदस्य शब्द का अर्थ है कैप्चर, उनको ओटो को अपने दांतों के बीच फंसाया और उसको दबाने लगे। ऐसे थे कृष्ण के ओठ लाल है और उसको और दबाए तो इसको और लाल हो गए, यानी उसका वर्णन हो रहा है किस प्रकार कृष्ण कुछ कहना चाहते थे लेकिन ईश्वर में तो सामने नहीं है, इसने इस प्रकार किया। और आगे उन्होंने क्या किया, दधी दधिमंत भाजनम, दधिमंत भाजनम, दधी को मंथन करने वाला जो पात्र है उसको उन्होंने क्या किया, भीत्वा मृषाश्रु, भीत्वा मतलब को तोड़ दिया। कैसे तोड़ा, उन्हें थोड़ा एक पत्थर के साथ, दृष्ट अश्मना, एक छोटा सा पत्थर था उसको लेकर उन्होंने तोड़ दिया। जब तोड़ने के बाद उन्होंने क्या किया, आंखों में आश्रु उसको प्रकाशित किया। कौन सा आश्रु है वो, नकली आंसु। अभी ये नकली आंसु क्यों प्रकट किया, अभी बच्चे होते हैं ना उसको कम बुद्धिमान मत समझो, बहुत बुद्धिमान होते हैं, दे आर वेरी इंटेलिजेंट। नकली आंसु क्यों है, प्रभुपाद लिखते तात्पर्य में, एक बच्चे का स्वभाव होता है, ये स्वभाव ये है जब वो क्रोधित होता है, वो क्रोध में कुछ कर बैठता है, उसके साथ में नकली आंसुओं को प्रकाशित करता है। आंसू ऐसी चीज है, ऐसा हथियार है, उसके सामने कितना बड़ा ऑटम बम कुछ काम नहीं करता है, ऑटम बम कुछ काम नहीं करता। खास करके दो लोगों का आंसू जो है ना, एक बच्चे का और स्त्री का, इसके सामने कोई जवाब नहीं है। दुनिया पूरा फेल हो जाती है, बल्कि दार्शनिक लोग, तार्किक लोग फेल हो जाते हैं। आप कितना भी आर्ग्यूमेंट करो, कितना भी समझाने के लिए प्रयास करो, उधर से भी आर्ग्यूमेंट चलेगा, इधर से आर्ग्यूमेंट चलेगा, लेकिन लास्ट में जब आंसू आएगा उसके लिए कोई जवाब नहीं। अभी यही कृष्ण को एक बात मालूम है, आप बच्चों को एक बात मालूम रहता है, अभी मान लो कि मैंने तो गड़बड़ किया, अभी गुस्सा करेगी माँ, तो गुस्से से आएगी मुझे मारने के लिए, मेरी आंखों में क्या देखेगी, आंसू को देखेंगी तो शांत हो जाएगी, इसे प्रोटेक्शन। ये नकली आंसुओं को धारण करना एक एक कारण। दूसरा ये है, जो कभी कभी कुछ कोई क्रोधित होता है ना, वो क्रोध में कोई व्यक्ति गलत करता है या कुछ छोड़ता है, कोई कुछ गलत बोलता है, लेकिन उनका उद्देश्य नहीं रहता है कि मैं गलत बोलूं, कुछ गलत करूं, लेकिन उनके मन में ऐसा रहता है कि उनको ऐसा करना पड़ेगा, मुझे नहीं करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जबरदस्ती है, वो अपने आप को ऐसा परिस्थिति में सोचते हैं कि बस मुझे इतना दुखी किया उसने, उस दुख को अभी है तो नहीं, इतना सारा दुख तो है नहीं, इतना सा आराम से सहन कर सकते हैं, लेकिन उस दुख को प्रकट करने के लिए कृष्ण की आंखों में आंसू जबरदस्ती प्रकाशित कराया। तो इसलिए इधर भगवान ने आंसू प्रकाशित किया, उन्होंने क्या किया, वो तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद दूसरे कमरे में गए, मक्खन खाने के लिए गए। इस प्रकार इस श्लोक में ये बातें वर्णन है। वेंट टू द अदर हाउस, अदर रूम, भयंगवम अंतरम गता, अंतरम गता मतलब अंदर एक कमरा था, उसके अंदर जाके वो दही मक्खन खाने लगे। तो ये श्लोक का अर्थ है। अभी प्रश्न ये है कि हमने ये देखा कि भगवान का जो क्रोध है वो होता है असुरों के ऊपर होता है, भक्तों के ऊपर क्रोध क्यों किया, पहला प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न ये है कि यशोदा मई ने ऐसा कार्य किया जिस वजह से कृष्ण नाराज हो गए, और यशोदा मई ने ऐसा कार्य किया जिसकी वजह से कृष्ण नाराज हो गए, तो ये थोड़ी ना भक्ति कहा जाता है। भक्ति वो चीज है जिसके द्वारा भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए हम ये जो श्लोक है, अन्याभिलाषणा शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, ये जो श्लोक है इसके अंदर शुद्ध भक्ति के पांच लक्षणों को वर्णन किया गया है। उनमें से तीन जो है स्वरूप लक्षण है और दो है तटस्थ लक्षण है। अन्याभिलाषणा शून्यम एक, और दूसरा ज्ञान कर्माद्यनावृतम दूसरा, के शुद्ध भक्ति के तटस्थ लक्षण माने गए हैं। अनुकूलेन कृष्णा अनुशीलनम, ये तीन चीज जो है वो भक्ति के स्वरूप लक्षण माने गए हैं। अनुकूलेन कृष्णा अनुशीलनम, इसका व्याख्या करते हुए श्री राजीव गोस्वामी बात कहते हैं, कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है। कृष्ण का अर्थ है कृष्ण स्वयं, कृष्णास्तु भगवान स्वयं, और साथ साथ में कृष्ण के जितने भी अवतार हैं और कृष्ण के संबंधित जितने भी वस्तुएं हैं, तदीय वस्तु जिसको कहा जाता है, गुरु वैष्णव और तुलसी मृदंग सत्कालय, जितने भी कृष्ण की तदीय वस्तु है वो सब कृष्ण की परिभाषा में आता है। भक्ति शब्द केवल कृष्ण को ही लागू होता है। कृष्ण को लागू होना का अर्थ क्या है, कृष्ण और कृष्ण के संबंधित जितने भी वस्तुएं उनको लागू होता है। तब बाद में आया कृष्ण अन्याभिलाषा शून्यम ज्ञान कर्माजनवर्तम अनुकूल है न कृष्ण अनुशीलनम, अनुशीलनम अनुशीलनम का अर्थ क्या है, भक्ति ऐसा चीज है जो शील, शील शब्द का अर्थ है क्रिया, यानी कुछ कार्य जब तक हम नहीं करेंगे तब तक उसको भक्ति नहीं कहा जाता है। तो ये जो शील शब्द है उसका फिर वापस दो अर्थ है, एक है चेष्टा रूपा, दूसरा है भाव रूपा। इससे हमको दो प्रकार की भक्ति प्राप्त होता है। एक है साधना भक्ति, दूसरा है भाव और प्रेम। भाव और प्रेम को भाव रूप कहा गया है। तो अनुकूल है कृष्ण अनुशीलनम, अनुशीलनम का व्याख्या करते हैं श्री रूप को समय पर कहते हैं, वो कार्य जो भगवान के लिए किया गया है उसको अनुशीलनम कहा गया है, कृष्ण अनुशीलनम। तो क्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं कि एक जगह खाली बैठा है तो भक्ति होता है, नहीं। भक्ति हमारे को इंद्रियों के द्वारा, शरीर के द्वारा, हमारे मन के द्वारा, वचन के द्वारा किया गया कुछ कार्य, भगवान के लिए किया गया कार्य को भक्ति कहा जाता है। तो प्रश्न उत्पन्न होता है कि अगर भगवान के लिए किया गया कार्य भक्ति है, भगवान के लिए भगवान के बारे में स्मरण करने का कार्य भक्ति है, तब प्रश्न आया है कि कंस ने भगवान का स्मरण किया था 24 घंटे भगवान का स्मरण किया, क्या कंस ने जो किया वो भक्ति है? नहीं। क्यों भक्ति नहीं है? क्योंकि कंस का जो कार्य था, कंस का जो भक्ति था, वो भगवान के लिए अनुकूल नहीं था। तो भगवान के लिए अनुकूल नहीं होने की वजह से तो कृष्ण अनुशीलनम के साथ और एक शब्द जोड़ना पड़ा, वो क्या है? अनुकूल ये ना। तो जब तक ये अनुकूल ये ना शब्द नहीं होगा, तब तक हम कृष्ण अनुशीलनम की भक्ति का पूर्ण परिभाषा नहीं होता है। इसके लिए एक उदाहरण देते हैं श्री जीव गोस्वामी पाद। वो कहते हैं कि जब तक भक्ति फेवरेबल इंटेंट, यानी भक्त भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं करता है, प्रसन्न करने की उद्देश्य नहीं करता है, तब तक उसको शुद्ध भक्ति ही कहा जाता है। भले ही भगवान के लिए करता हो, लेकिन भगवान को प्रसन्न करने से की उद्देश्य नहीं किया गया कार्य को भक्ति नहीं कहा जा सकता। कोई उदाहरण दे सकता है, क्या जरूरत है ये अनुशीलनम शब्द का? क्योंकि भगवान के लिए करना, किसी के लिए करना मतलब किसी को प्रसन्न करने के लिए करना, और अलग से कुछ उद्देश्य, अलग से उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं। जैसे एक उदाहरण दिया है, कोई किसी उदाहरण दे सकता है कि सारे सैनिक लोग युद्ध करने गए, इसका अर्थ क्या है? वो अस्त्र शस्त्र लेके गए ना साथ में, ऐसे थोड़ी ना कि ऐसे खाली जाएंगे। तो भगवान के लिए करना भक्ति अगर कोई कहता है तो उसी में भगवान की प्रसन्नता भी इंक्लूडेड है उसके अंदर, क्योंकि जैसे कोई हथियार लेके जाता है, ऐसे कोई युद्ध करने के लिए जाता है, तो कोई सैनिक तो हथियार को साथ में लेके जाता है ना, अलग से लेके नहीं जाता है, या उस छोड़ के नहीं जाता है। इसलिए भक्ति का परिभाषा कृष्ण अनुशीलन में पर्याप्त है, अनुकूल लेना शब्द की आवश्यकता नहीं है, कोई कह सकता है। लेकिन श्री जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि नहीं, अनुकूल लेना शब्द होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि मान लो कि आपने सैनिकों को बुलाया, सारे सैनिक आओ आके भोजन के लिए बैठो, चाहे वो सब हथियार लेके आएंगे साथ में? नहीं आएंगे, ठीक है। तो हर परिस्थिति में जब कोई भी कृष्ण के लिए कोई कार्य करता है, हो सकता है कोई कृष्ण के लिए कार्य करे लेकिन उनका उद्देश्य कृष्ण प्रसन्न करना नहीं हो सकता है। जैसे कंस, कंस ने कृष्ण की सेवा किया, इतना हमने कृष्ण को प्रसन्न भी किया, कृष्ण का कार्य, कंस का कार्य कृष्ण को प्रसन्न हुए। कंस ने क्या किया? कृष्ण ने युद्ध किया, कृष्ण मजा ले रहे थे कि नहीं? तो मजा ले रहे थे, बोला गोलोक वृंदावन में मेरा एक्सरसाइज नहीं हो रहा था, शक्ति तो है लेकिन हाथ पैर को थोड़ा मसाज मिलना था, है कि वो नहीं हो पाया, मेरा सारा शक्ति को प्रकट नहीं कर पाया, लेकिन कंस ने मुझे बड़ा अच्छा मौका दिया, मेरा सारा शक्ति को मैं प्रदर्शित करूं। तो कंस ने कृष्ण को प्रसन्न भी किया, और कंस की वजह से कृष्ण प्रसन्न ही नहीं थे, बल्कि 24 घंटा कंस कृष्ण का स्मरण भी कर रहा था। लेकिन क्या कंस को शुद्ध भक्त माना जाता है? नहीं माना जाता है, क्योंकि कंस का उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना नहीं था। भले ही कंस से कृष्ण प्रसन्न हो गए, लेकिन कंस का उद्देश्य नहीं था, कंस का जो भक्ति था वो प्रतिकूल था, प्रतिकूल लिए ना, अनुकूल नहीं था। इसलिए ये जो उदाहरण के द्वारा जीव गोस्वामी पाद सैनिक जब युद्ध में जाता है तो शस्त्र शस्त्रों को लेके जाता है, कभी वही सैनिक खाने के लिए आता है तो अस्त्र शस्त्र को लेके नहीं आता है। इसलिए हर अवस्था में सैनिक जो है वो अस्त्र शस्त्र को साथ में लेके नहीं जाता है। इसी प्रकार हर अवस्था में कोई व्यक्ति जो भक्ति करता है वो कृष्ण के लिए भले ही किया क्यों ना किया गया हो, हर अवस्था में उस भक्ति को शुद्ध भक्ति नहीं कहा जा सकता है। इसलिए उसी उन्हीं कार्यों को शुद्ध भक्ति कहा जा सकता है जब वो भक्त क्या सोचता है, मैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं। तो कृष्ण के लिए करना भक्ति नहीं है, शुद्ध भक्ति नहीं है, कृष्ण की प्रसन्नता की हेतु से करना यह शुद्ध भक्ति है। एक बात है, व्यक्ति कह सकता है ठीक है अनुकूल ये ना ये शब्द काफी है, अनुशीलन की क्या आवश्यकता है, अनुशीलन तो छोड़ दो, खाली अनुकूल भावना से कहो तो वही भक्ति है। क्योंकि कोई कृष्ण का अनुकूल में है तो कुछ ना कुछ करेगा तभी तो अनुकूल है। तब श्री रजू गोस्वामी कहते हैं नहीं, अनुशीलन भी होना जरूरी है। केवल कृष्ण के अनुकूल में रहना, इसके द्वारा क्रिया और या चेष्ट रूपा भाव रूपा अलग अलग प्रकार की भक्ति है उसका वर्णन पूर्ण तरीके से नहीं हो पाता है। इसलिए अनुकूलेन कृष्णानुसेवनम, ये इसके द्वारा ही शुद्ध भक्ति का स्थापना हो सकता है। आदर्श विश्वनाथ ठाकुर इसी बात को आगे लेते हैं और ये श्लोक को कोट करते हैं और कहते हैं कृष्ण का या यशोदा मैं का ये कार्य क्या क्या रहता है, कृष्ण को नीचे छोड़ के वो दूध को उबालता हुआ दूध को देखभाल करने के लिए जाना। कृष्ण यशोदा मैं का ये कार्य से कृष्ण क्या हो गए, नाराज हो गए, प्रसन्न हो गए, और कंस के कार्य से कृष्ण प्रसन्न हो गए। अभी कौन भक्त कौन अभक्त, हम सब बोलते हैं कृष्ण को प्रसन्न करना हमारा जीवन का उद्देश्य है, वो अच्छी बात है। अगर शुद्ध भक्ति का परिभाषा कृष्ण को प्रसन्न करना है तो कंस के कार्य से कृष्ण प्रसन्न हुए और यशोदा कार्य से कृष्ण संजात कोपः क्रोधित हो गए। अभी कौन शुद्ध भक्त है, कंस है कि यशोदा मई, क्यों, क्योंकि यशोदा का उद्देश्य ये नहीं था कृष्ण को क्रोधित करना, यशोदा मई का उद्देश्य क्या है, कृष्ण को प्रसन्न करना। लेकिन कंस का उद्देश्य क्या था, कृष्ण को मारना। कंस का उद्देश्य ये नहीं था मैं कृष्ण को प्रसन्न करूं। तो भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, उद्देश्य महत्वपूर्ण है। इसलिए आगे श्री विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं अनुकूल ये न कृष्णानुशीलनम, और अनुकूल ये न अगर शब्द अगर आप नहीं रखेंगे तो कंस भी शुद्ध भक्ति के कैटेगरी में आ जाता है। इसलिए कंस जैसा शुद्ध व्यक्ति की भक्ति को शुद्ध भक्ति से अलग करने के लिए हम ये अनुकूल ये न ये शब्द इस्तेमाल करना जरूरी है। अब कोई प्रश्न पूछ सकता है अनुशीलन की क्या जरूरत है, लिखो अनुकूल ये न, बस खाली अनुकूल लिखो, अनुकूल भावना से अनुकूल चीजें हैं वो चीजें भगवान की शुद्ध भक्त है। तब श्री विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं मान लो कोई मटका है, एक मटका है जैसे दधिमंत भाजनम, ये दधिमंत भाजनम कृष्ण का अनुकूल कहता है कृष्ण का प्रतिकूल में है, लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि दधि मंथन करने वाला जो भाजन है जो बर्तन है वो कृष्ण का शुद्ध बर्तन है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर कोई भावना नहीं है, कोई चेष्ट रूपा या क्रिया रूपा कुछ कार्य नहीं है, कुछ अपनी ओर से कुछ कुछ करता नहीं है। भले ही कृष्ण के अनुकूल ना हो या प्रतिकूल भी ना हो फिर भी हम उसको शुद्ध भक्त नहीं मान सकते। इसलिए ये प्रतिकूल और अनुकूल इन सब चीजों को वर्णन करते हुए श्री विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं इस श्लोक को द्वारा कि यशोदा मई ने भले ही उनके कार्य के वजह से कृष्ण प्रसन्न हुए और कंस की कार्य से भले ही कृष्ण प्रसन्न हुए, लेकिन कंस को शुद्ध भक्त नहीं माना जा सकता, यशोदा मई को शुद्ध भक्त माना जा सकता है। क्यों, क्योंकि यशोदा मई का भावना क्या थी, कृष्ण हमेशा प्रसन्न रहे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो श्री विश्वनाथ ठाकुर कृपाल ये अन्याभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मा जनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा इस श्लोक की व्याख्या में ये श्लोक को इस्तेमाल करते हैं। तो भगवान को कहा जाता है भाव ग्राही जनार्दना, भाव को ग्रहण करते हैं। अनेकों अनेकों ऐसे परिस्थितियां हैं जहां भगवान की कार्य से भक्त नाराज हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, और कभी कभी भक्तों के कार्य से भगवान क्रोधित हो जाते हैं। तो ये जो क्रोध भगवान और भक्तों के बीच में एक दूसरे के कार्यकलाप की वजह से, ये क्रोध जो है बड़ा दिव्य है। और श्री विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं पिछले अध्याय के पिछले श्लोक के तात्पर्य में महत्वपूर्ण बात कहते हैं, ये इतना दिव्य है क्रोध कि ये साधारण भौतिक बुद्धि ये समझ नहीं सकता। ऐसा कैसे है कि भगवान भक्तों से क्रोधित करके भक्त भी भगवान से क्रोधित हो जाते हैं? हमने ये बात तो सुना है कि भगवान जो है क्रोध करते असुरों के ऊपर, असुर जो है भगवान के ऊपर क्रोधित होते हैं, लेकिन इन दोनों क्रोध के बीच में जमीन आसमान का अंतर है। कभी कभी हम सुनते हैं कि भगवान जो है असुर लोग जो है भगवान को डांटते हैं, क्रोधित क्रोध में कुछ अनाप शनाप बोलते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि भक्त लोग भी भगवान को अनाप शनाप बोलते हैं, लेकिन ये इतना अंतर है, दिन और रात में जो अंतर है उस प्रकार का अंतर है। ये दिव्य स्तर का जो प्रेम है वो प्रेम के अंदर ये क्रोध स्वभाव है। इसलिए ऐसा कहा जाता है एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। जब युद्ध होता है तो एक दूसरे को मारने में तुला रहते हैं, फाइटिंग करते हैं, लेकिन जब एक पिताजी और नौजवान तो लड़का जब बड़ा होता रहता है ना, वो भी तभी कुश्ती लड़ते हैं, लेकिन वो प्रेम पूर्वक व्यवहार है। इनमें हम दोनों को समझना वो तभी संभव है जब भगवान की और भक्तों के बीच में प्रेम पूर्वक व्यवहार को हम समझ पाएंगे। एक जगह गोपियां बहुत गुस्से में भगवान को कहती हैं, कहते लगी पता नहीं कहां से आ गया तू, क्या क्या कर दिया, चुप चुप के तुमने किसी को मार दिया, पीछे से बाण मार कर दिया, एक व्यक्ति ने आया आके तुमको बहुत सारा उपहार दिया, पूरा सब कुछ निछावर कर दिया, फिर भी उसको तुमने बांध दिया, कहां का न्याय, क्या न्याय करते हो तुम, समझ में नहीं आता। पता नहीं ऐसे 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 व्यक्ति के प्रति हमारा प्रेम क्यों है, ऐसा गोपी कभी कृष्ण को डांटती है, यशोदा में भी कृष्ण को कभी डांटती है, और कृष्ण भी यशोदा में क्रोधित हो जाते हैं। ये सब प्रेम का आदान प्रदान है, प्रेम का व्यवहार है, ये हमारी भौतिक बुद्धि के द्वारा हम नहीं समझ सकते। ऐसे ये पूरा ये श्लोक का सार यही है, संजातकोपः ये शब्द के द्वारा हम समझ सकते हैं। यशोदामय के कार्य से कृष्ण बड़े क्रोधित हो गए, लेकिन कृष्ण का क्रोध जो है वो केवल वात्सल्य को वर्धन करने वाला है, यशोदामय में वात्सल्य की लीलाओं को और पुष्ट करने वाला है। तो इससे सारे भक्तों को ये जो अन्याभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मा जनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुसेवनम भक्तिरुत्तमा, ये जो शब्द है, ये जो श्लोक है, इसका वास्तविक और सही व्याख्या को करना चाहिए और जानना चाहिए। और हमारे प्रत्येक कार्य के पीछे एक ही हेतु होना चाहिए, क्या है वो, कृष्ण को प्रसन्न करना। और कृष्ण के कार्य से नाराज हो या खुश हो वो बात की बात है, लेकिन हमारे हृदय में क्या भावना होना चाहिए वो सबसे महत्वपूर्ण है, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। भक्ति जो है वो बहुत सूक्ष्म चीज है, इट इज वेरी सटल। सूक्ष्म होने की वजह से बहिरंगिक जो कार्य है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं जितना हमारे हृदय की भावना है। तो एक भक्त ने मुझे प्रश्न पूछा कि अगर भक्ति हृदय की भावना है वो सही होना चाहिए, वो बराबर होना चाहिए, वो कैसे हो पाएगा? वो तभी हो पाएगा जब हम शुद्ध भक्तों की संगति में बैठ के इस प्रकार की जो भागवतम की भक्ति रसामृत सिंह जी की चर्चा हम करेंगे। ये चर्चा करने के द्वारा हमारे हृदय की जो भावना है, एटीट्यूड, वो सही होता है। उपदेश अमृत नामक ग्रंथ में श्री प्रभुपाद इंट्रोडक्शन में एक बहुत सुंदर बात लिखते हैं, डिवोशन इज एवरीथिंग इज एटीट्यूड, एवरीथिंग इज एटीट्यूड इन डिवोशनल सर्विस। एटीट्यूड का अर्थ क्या है, हमारी क्या भावना है या क्या हमारी क्या दृष्टिकोण है। मान लीजिए कोई व्यक्ति गीता भागवत, जब मायावादी गीता है भागवत पढ़ता है तो वो भी गलत सिद्धांत को स्थापना करता है। एक वैष्णव जब न्यूज़पेपर का हो या कोई रास्ते में जाके होर्डिंग भी पढ़ता है उसपे उसके उसको पढ़ के उसको सही व्याख्या स्थापना कर सकता है या सही सिद्धांत को स्थापना कर सकता है। तो ये बहिरंग कार्य जो है भक्त का और भगवान का बीच में, उनको अगर समझना है तो भक्ति का मूल परिभाषा को जानना होगा और भगवान का हृदय को जानना होगा। इसलिए भावग्राही जनार्दन कहा गया है। तो व्हाट इज दैट मेन भाव, में मूल भाव क्या है। मूल भाव ये है कि भक्ति सामने सिंधु में वर्णन किया गया है, भजनीय परम पुरुष सुखम ही स्वसुखत्वम। इसकी व्याख्या करते हैं श्री विश्वनाथ ठाकुर, कहते हैं ये शुद्ध भक्ति का जो परिभाषा जो पहले किया गया है, अन्य अभिलाषा शून्यम ज्ञान कर्मा जनावृतम अनुकूल कृष्ण श्रीम भक्ति रत्मा, इसको और गहराई से और स्पष्ट रूप में अगर समझना है भक्तों को, केवल यही फॉर्मूला अपने जीवन में धारण करना होगा। क्या है वो, भजनीय परम पुरुष सुखम ही, कृष्ण का सुख ही मेरा सुख है। अभी यशोदा मई का जो कार्य है उससे भगवान नाराज हुए, लेकिन यशोदा मई जय दही को या आप दूध उबालते दूध को निकालने के लिए क्यों गई, क्योंकि अगर वे ये कार्य नहीं करेंगे तो क्या होगा, कृष्ण के लिए कल दूध नहीं मिलेगा, मक्खन नहीं मिलेगा, तो कृष्ण को सुख नहीं मिलेगा। तो यशोदा मई का एक ही उद्देश्य था, जब कृष्ण को नीचे रख के दूध को निकालने के पीछे क्या उद्देश्य था, कृष्ण का सुख, हाउ कृष्णा कैन बी हैप्पी। अधिकांश भक्त लोग कहते हैं प्रभु जी मैं खुश नहीं, मैं प्रसन्न नहीं, मेरा मन ठीक नहीं है, यही समस्या है। सारा समस्या यही है कि जब हम अपने सुख के बारे में सोचते हैं, और सारा समस्याओं का समाधान यही जब हम कृष्ण के सुख के बारे में सोचते हैं। तो अन्याभिलाषा शून्यम ज्ञान कर्मार्जनावृतम अनुकूल कृष्णानुसेवनम शीलनम भक्तिरत्तम, ये बहुत लंबा चौड़ा श्लोक है, इसके अंदर बहुत सारा तत्व है, सब कुछ है, लेकिन अगर उसको व्यवहारिक रूप में सरल रूप में अगर समझना चाहते हो तो क्या सोचिए, क्या 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 श्लोक है, भजनीय परम पुरुष सुखम ही, कृष्ण का सुखी मेरा सुख। इधर जो यशोदा मई कार्य से कृष्ण क्रोधित हो गए, लेकिन यशोदा मई के हृदय में क्या भावना थी, कृष्ण का सुख के लिए ही उनका सारा प्रयास था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, द मोमेंट यू थिंक ऑफ योर हैप्पीनेस दैट इज द कॉज ऑफ योर सफरिंग, दैट इज द कॉज ऑफ योर मिजरी। जब मैं अपने सुख के बारे में सोचता हूं वही हमारा दुख का कारण है। जब हम कृष्ण का सुख के बारे में सोचते हैं भले ही कृष्ण उससे नाराज भी क्यों ना हो, वही हमारा क्या है, वो सुख का कारण है। वाई जस्ट थिंक ऑफ प्लीजिंग कृष्ण। इसलिए भगवान मायावादी लोग या अभक्त जो होते हैं कृष्ण का गुणगान करते हैं, भगवान हे भगवान आपने सृष्टि की, आपने सब कुछ हो रहा है, ये आपकी वजह से हमको हवा पानी मिल रहा है, ये भाव क्या है, आप हो, आप सब कुछ मुझे देने वाले हो, इसकी वजह से हमको ये सब मिल रहा है, इसकी आपकी स्तुति कर रहे हैं। कृष्ण से प्रसन्न नहीं होते, भक्तों की स्तुति से कृष्ण प्रसन्न नहीं होते, लेकिन भक्तों का डांट से कृष्ण ज्यादा प्रसन्न होते, क्योंकि भक्तों के डांट में प्रेम है, उसके पीछे उनका भावना क्या है, मैं कृष्ण को सुख पहुंचाऊं। ऐसे देखा जाए दूध पीने वाला बच्चे को बाजू में रख के कुछ और काम करना है, इससे बढ़कर कौन सा घृणात्मक कार्य मां के लिए बताओ। सबसे प्रथम कर्तव्य होता है मां का बच्चे को दूध पिलाना। ठीक है यशोदा, मैंने क्या सोचा, मेरे स्तर में दूध जो है वो कृष्ण को 2 मिनट के बाद ही पिला सकती हूं, लेकिन ये दूध उबल जाएगा ना वो कल इसके लिए मक्खन नहीं मिलेगा, वापस जाएगा दूसरे घर में।
तो ईश्वरमय के मन में यही भावना थी, लेकिन कृष्ण ने क्या किया, क्या सोचा, क्या मेरी माँ पहले तो मुझे सुबह सुबह उठाई नहीं, दूसरा दूध पिलाना कर्तव्य वो भी नहीं किया, कुछ और कार्य है क्या उससे बढ़कर। तो ये दिव्य बातें हैं, ये सब प्रेम की विषय बातें हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत गहरा सिद्धांत है। हम साधना के स्तर में इन प्रेम की बातों को केवल चर्चा मात्र कर सकते हैं, इसके अंदर इतना प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन बात यह है जो इसके पीछे जो गहरा सिद्धांत है उसको निश्चित रूप से अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। तो सार रूप में ये जो पूरा प्रसंग आज का श्लोक और कल का श्लोक का सार वाला एक श्लोक है, भजनीय परम पुरुष सुखम ही ससुखोत्थम, भगवान श्री कृष्ण एकमात्र भजनीय परम पुरुष है, उनका सुख ही एकमात्र मेरा सुख है। हरे कृष्ण। एनी क्वेश्चन, कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। ग्रंथा श्रीमद्भागवतम की श्री प्रभुपाद की जय।